है। गंगा का जल प्राकृत जल नहीं है। आप श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 17वें अध्याय को एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा 10-20 श्लोक शुरू में ही पढ़ने से समझ में आया है। पांचवा स्कंद का 17 अध्याय में भूगोल का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब वामन देव बलि महाराज की सभा में भूमंडल को माप रहे थे तो नीचे के डेक से एक पैर से नीचे के लोगों को नाप लिए, और दूसरा डेक जब बढ़ाए ऊपर बड़ी तेज गति से, तो वो चरण जब ऊपर जाने लगा तो ब्रह्मा के लोक से ऊपर चला गया। यद्यपि उस चरण को देखते ही ब्रह्मा और वहां के ऋषि लोग समझ गए कि भगवान का चरण है, उनकी पूजा अगवानी करने के लिए तैयारी करने लगे, तब तक वो आगे चला गया। तो ब्रह्मांड का जो कवर है वो फट गया भगवान के पैरों से लगकर, तो फट गया जो आवरण है, जो प्रकृति के 8 तत्वों से बना हुआ आवरण, वैसा आवरण है इसके ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक कई आवरण है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 तत्व इसमें बने हुए हैं। तो कवर ही फट गया एकदम, इनके अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड का कवर फट गया सत्य लोक के ऊपर। तो इस सभी ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड बिरजा में तैरते हैं, कारणोदक जल में, जिसमें कारणोदक शाही सृष्टि के संकल्प करते हैं तो उनके श्वास से निकल निकल कर ब्रह्मांड जल में तैरते हैं। वो कारण जल स्पिरिचुअल जल है, प्राकृत जल नहीं है। तो जब इस ब्रह्मांड में छेद हो गया तो कारण जल उस छेद से होकर उनके चरणों को धोते हुए गिरने लगा। छेद हो गया तो जल में था ही, कारण जल में, स्पिरिचुअल जल में था, तो वो जल उनके चरणों को धोकर सबसे पहले सत्यलोक में गिरने लगा। तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल से उस जल को रोकने लगे, भगवान के चरण को धोकर आ रहा था, लेकिन वो कमंडल में ही सीमित नहीं रह पाया, उनको उभर करके गिरने लगा। ब्रह्मांचल की घाटियों में 3 भाग में विभाजित हुआ। तो आज तक वो मरम्मत नहीं हो पाया है, ऐसा नहीं कि वो फट गया तो एक बार फिर उसका मरम्मत हो जाए, इसलिए आज तक वो गिर रहा है। तो जल गिरता है ब्रह्मांड सत्यलोक में, और वहां से ब्रह्मांचल की घाटियों से 3 भाग में, विस्तार से जानने के लिए मैं बतलाया, पढ़ लीजिए पंचम स्कंद के 17वां अध्याय, कहां कहां वो जल जाता है और किस किस नामों से प्रभाव जाना जाता है। वही जल यह हिमाचल की घाटियों से, हिमालय से होकर भारतवर्ष में, उत्तर भारत में घूमते हुए सागर में मिला है, गंगा सागर में। तो वह जल उसमें, यद्यपि और प्राकृत जल भी मिलते हैं, वर्षा के, नली के, कानपुर, दिल्ली के, वहाँ कई शहर, दिल्ली तो जमुना है, लेकिन और जो भी शहर पटने हैं, इलाहाबाद, पटना आदि, सब नलियां भी मिलती हैं उसमें। उस स्पिरिचुअल जल में ही गंदे जल भी मिलते हैं, कभी गाज, कभी कीचड़, बरसात में बहुत गंदा दिखते हैं। लेकिन जो इस तत्व को समझ रहा है कि गंगा स्पिरिचुअल जल है, उसमें दोष बुद्धि नहीं करता, वो समझता है कि गंगा पवित्र है, उसमें गोता लगाने से, स्नान करने से हमारा पाप दूर होगा। भगदत्त जी ने प्रयास करके इसको पृथ्वी पर लाया है। तो इन सब कारणों से गंगा का जल अपवित्र नहीं होता। वह द्रवीभूत ब्रह्म जल कभी भी प्राकृत नहीं है, कभी भी प्राकृत नहीं है, और उसमें कोई दोष नहीं है, किसी तरह दिखे, गंदा दिखे या फेन के साथ। उसी प्रकार वैष्णव में प्राकृत दोषों का आरोप नहीं करना चाहिए, वैष्णव भी अप्राकृत गुण से विभूषित होते हैं, उनमें भगवान को समझने की क्षमता है, या भगवान के पथ के पथिक हैं, इसलिए उनके प्रति दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए, उन्हें प्राकृत जीव नहीं समझना चाहिए। इस जगत में ऐसे बहुत से लोग होंगे, और स्वभाव जनित दोष में उसके नीच वर्ण में जन्म लेना भी है, नीच कुल में जन्म लिया, वो भी पूर्व जन्म का संस्कार है, उसमें उसका क्या दोष है। वर्तमान में तो कोई गलती किया नहीं, पहले की गलती है जिस कारण से वो किसी नीच वर्ण में जन्म लिया। तो नीच वर्ण में जन्म लेना भी अनुचित स्वभाव उसी के अंदर आएगा, पहले का उसका कारण है। तो नीच वर्ण में जन्म कठोरता आलस्य क्रोध लोभ ये जो स्वाभाविक दोष ये दिखाई देने के बाद भी, या शारीरिक कुरूपता ज्वर बुखार कोई बीमारी, मान लीजिए किसी को टीबी हो गया तो उसे घृणा करने की क्या जरूरत है, सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार भक्त जनों में सब देख करके उनको प्राकृत जीव समझकर अपमान नहीं करना चाहिए, जैसे गंगा जल का अपमान नहीं किया जा सकता, ये है। तो इस प्रकार सभी लोगों ने कुछ न कुछ लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शैल प्रभुपाद। प्रभुपाद तो उन्हीं दो टीकाओं का व्याख्या किए हैं। तो प्राकृत जगत में अवस्थित होने के कारण प्राकृत दृष्टि से देखने लगते हैं, हमारे पास जो चश्मा है उसी से देखेंगे। कभी कभी होता है बच्चों को देखे हैं प्लास्टिक के चश्मा पहनते हैं, तो कभी लाल कभी पीला कभी हरा जैसा प्लास्टिक लगा है उसको पहन कर देख कहते हैं देखो सब लाल दिख रहा है, पीला दिख रहा है, हरा दिख रहा है। तो हमारे दृष्टि में प्राकृत दोष है, संसार का दोष। इसके कारण हम इसी चश्मे से देखने लगते हैं, समझ नहीं पाते हैं भक्तों की स्थिति। तात्कालिक प्राकृत दोष प्रतीत होता है, फिर भी उनको प्राकृत नहीं मानना चाहिए। अपने आंख कभी कभी आंख पर विश्वास नहीं किया जाता है, जैसे आंख पर विश्वास करते हैं यही प्रमाण है हम देखे हैं, वैसे देख कर भी नहीं विश्वास किया जा सकता। जैसे हम इन नेत्रों से चंद्रमा को या सूर्य को देखते हैं तो एक थाली के बराबर दिखता है, लेकिन बचपन से इतना सुनते आए हैं कि इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा है सूर्य, बहुत बड़ा है, थाली के बराबर नहीं है, तो हम देखते हुए भी थाली के समान नहीं मानते हैं, अपने आंख पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि सुने हुए ज्ञान पर भरोसा करते हैं। वैज्ञानिकों ने शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, हम देखते हैं फिर भी इसको मानते नहीं। उसी प्रकार कभी कभी भक्तों में दोष दिखता है, लेकिन उस दोष को उस रूप में नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत बड़ी विशेषता है कि वो भगवान का भजन करता है, सबसे बड़ी बात यह है। और जो भगवान से संयुक्त हो गया, भगवान से जुट गया, उसको साधारण जीव नहीं कह सकते। मान लीजिए लोहा का छोटे छोटे टुकड़े छोटे छोटे पार्ट से प्लेन बना है या ट्रेन बना है, उसमें कई पार्ट पुर्जे लगे हैं लोहे के प्लास्टिक के, लेकिन जो ही वो प्लेन के साथ युक्त हो जाते हैं तो अब उनको प्लास्टिक का लोहा नहीं कहते, सबको प्लेन कहते हैं। एक नट बोल्ट भी वो प्लेन ही हो जाता है, क्योंकि उसे जुट कर वो चल रहा है, उड़ रहा है। तो आकाश में उड़ते हुए प्लेन को देख कर यह नहीं कह सकते देखो प्लास्टिक वो लोहा, ऐसा नहीं, सब प्लेन है जा रहा है, ट्रेन है। तो भगवान से जुट जाने के कारण जीव की विशेषता बढ़ जाती है, बहुत बड़ा हो जाता है, और जिसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं वो वास्तव में सबसे पूज्य हो जाता है। निषाद राज रामचरितमानस में वर्णन है कि निषाद राज जब गंगा के तट पर भरत जी जा रहे थे और वशिष्ठ जी, तो पहले तो उनको दोष बुद्धि हुई कि ये भरत कहाँ आ रहा है, तो विरोध करना चाहे, लेकिन जब इनका सीआईडी विभाग बताया कि नहीं हो तो मिलने आ रहा है, कोई गलत नियत से नहीं है, तो निषाद राज इनका अगवानी करने के लिए गए। तो वशिष्ठ जी बतलाते हैं भरत जी को, देखो ये निषाद श्री राम का मित्र है, राम ने इनको अपना मित्र बनाया, आलिंगन किया। तो सुनते ही भरत दौड़े उनके चरण पकड़ने के लिए, इतनी निषाद ऐसा नहीं करने दिए, लेकिन फिर भरत जी उनको आलिंगन की छाती से लगाकर, तो आकाश में देवता लोग देख रहे थे इस लीला को विमान पर चढ़े हुए, तो देवता लोग चकित होकर कहने लगे कि बाप रे, ऐसे नीच पंश में जन्मा हुआ इस निषाद को अगर स्पर्श हो जाए तो सचैल स्नान करने पर पवित्रता होती है, छू ले तो कपड़ा सहित नहाना पड़ेगा, उसका आलिंगन भगवान का अनुज भरत कर रहे हैं। दूसरा देवता कहते हैं कि इसमें क्या आश्चर्य है, साक्षात श्री राम ने इनका आलिंगन किया। फिर वशिष्ठ जी भी उसी तरह आदर देते हैं, निषाद राज का आलिंगन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। वशिष्ठ जी जब आलिंगन किए तो निषाद राज एकदम विदेह हो गए, उनके मन में एकदम इतना विचित्र आश्चर्य हुआ कि सारे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मेरा आलिंगन करे, यह बड़प्पन मुझ में कहां से आ गया, दिन रात नीच वंश में जन्मा हुआ मछली मारकर खाने वाला, और इतनी बड़ी बड़प्पन आ गया कि वशिष्ठ आलिंगन कर रहे हैं, भरत आलिंगन कर रहे हैं। वशिष्ठ जी के आलिंगन से उनको बहुत आश्चर्य हुआ, तब वो सोचने लगे कि यह बड़प्पन राम की भक्ति से हुआ है, राम ने जब मुझको अपना बनाया तो मैं इतना बड़ा व्यक्ति हो गया। राम किन आपन जब ही थे, भयो भुवन भूषण तब ही थे, राम ने जब मुझको अपना स्वीकार किया तो मैं इस भुवन का सिंगार हो गया, मुझ में कोई शक्ति, बड़े व्यक्ति से जुटने से मेरी महिमा बढ़ गई है। तो इस प्रकार दूसरों को भी इस तरह सोचना चाहिए कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान से जुटा हुआ है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि सम्यक व्यवस्थित, वह व्यक्ति जो जिस रूप में होना चाहिए उस रूप में है, उसकी व्यवस्थित बुद्धि है। यदि उसके व्यवहार में गलतियां दिख रही हैं, कभी कभी दोष दिखता है, लेकिन उन दोषों से उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। भगवान कहते हैं अपि चेत दुराचार हो, कुछ दुराचार कुछ गलती कर देता है, लेकिन उसकी विशेषता है कि भजते माम अनन्य भाग, मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, यही है उसकी सम्यक व्यवस्था, यही उसकी सम्यक व्यवस्थिति यही है कि वो भगवान का भजन करता है। तो जब भजन करता है तो साधु रेव समन्तव्य, वो साधु ही मानने लायक है, दूसरा कुछ नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वस्य शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने हे न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान यहाँ तक कहते हैं, हे अर्जुन इस बात को दुनिया में हल्ला कर दो, सब जगह बतला दो कि जो मेरा भजन करता है अगर उसमें कुछ दोष भी है या थोड़ा भी भजन करता है तो उस भजन का नाश नहीं होता है, वो शाश्वत है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया, और मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, उनकी भक्ति की रक्षा करता हूँ, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, विनाश नहीं होता। तो भगवान इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं। कभी कभी भक्तों में दोष दिखाई देता है, लेकिन हमारे देखने से वो दोष दोष नहीं है, क्योंकि हमारी आंख दोष जनित है। अगर हम इस तरह देखते हैं तो भक्त लोग क्यों गलतियां कर देते हैं, इसका कुछ रीजन है, वो रीजन है भगवत प्रीति के लिए, या पहले का उनका संस्कार इस प्रकार का दोष कर देता है। भगवान जब उसको दोष नहीं मान रहे हैं तो हमको मानने का क्या अधिकार है। बाली को जब भगवान मारे तो बतलाए कि तुम गलती किए हो, तुम अपने भाई की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किए हो, यही दोष बतला पाए। तो बाली कहा कि अच्छा, लोग जीवन भर भजन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, मरते समय आपका नाम उच्चारण नहीं कर पाते, और मैं अपने जीवन के अंत में साक्षात आपका दर्शन कर रहा हूँ शरीर छोड़ने की अवस्था में, यह पाप का परिणाम है, पाप का रिजल्ट है। तो भगवान कुछ नहीं बोल पाए, टीकाकार लोग कहते हैं कि तीन जगह भगवान की बोली बंद हो गई, कुछ नहीं कह पाए, बाली का उत्तर कुछ नहीं दे पाए, यही कहे कि कहो मैं तुम्हारा प्राण अमर कर दूं। ये पाप का परिणाम तो नहीं हो सकता ना कि मरते समय आपको साक्षात देखा जाए। तो कहे बाली कहे नहीं नहीं, इतना सुंदर मृत्यु प्राप्त करके मैं क्यों शरीर प्राप्त करूंगा, मेरे पुत्र अंगद को अपने चरणों में रख लीजिए, बस मुझे प्रेम से आपका दर्शन करते हुए मरने दीजिए। लेकिन वह बाली को जो आरोप लगाए वही गलती विभीषण भी किया, सोई करतूत विभीषण खेरी, सपने नहीं राम ही हेरी। बाली के मरने के बाद उसके पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया और विभीषण भी किया उसी तरह का गलती, सुग्रीव भी किया, रावण के मरने के बाद विभीषण मंदोदरी को पत्नी बनाया और सुग्रीव बाली के मरने के बाद उनकी पत्नी को। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि भगवान अजीब है, रहती न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत सौ बार ही एक ही, अपने भक्तों की गलती को कभी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कुछ अच्छा किया है उसको याद करते हैं, ये अच्छा किया है। तो भगवान जब अपने भक्तों का इतना पक्ष ले रहे हैं तो फिर हमारा क्या अधिकार है उनको दोषी कहना कि इसमें गलती है उसमें गलती है। भक्तों का पालन भगवान करते हैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि राम अपने राज्यसभा में विभीषण और सुग्रीव को बराबर आसन पर बिठाकर प्रशंसा कर रहे थे वशिष्ठ जी से और भरत जी से। तो उसका वर्णन करते करते गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हमारे प्रभु शील निधान है, अद्भुत शीलवान है, प्रभु तरुतर कपिदार पर तेहिकिए आप समान, तुलसी न कहूं राम सो साहिब शील निधान। अपने पेड़ के नीचे बैठते हैं और बंदर पेड़ के ऊपर, ऐसा कोई स्वामी है कि नौकर कुर्सी पर बैठ जाए स्वामी जमीन पर बैठे, इतना शील निधान कोई नहीं है। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों का इतना फेवर करते हैं, तो हमारा नहीं अधिकार है कि हम उन पर दोषारोपण करें, क्योंकि उनका संबंध भगवान से है, भगवान का भजन करता है। दुनिया वाले अपने लिए करते हैं, भगवान के लिए कर रहा है। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शील प्रभुपाद एक बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि कृष्ण भक्त आचार्य वंश में हो या किसी साधारण वंश में जन्मा हो, बहुत उत्कृष्ट ब्राह्मण परिवार में, गोस्वामी परिवार में हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी वंश में जन्म लेने वाले में एक दोष हो जाता है, भक्तों में दोष आने की संभावना है कि हम उच्च वंश में जन्मे, हम ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, हमारा कुल श्रेष्ठ है, ये तो चमार है, भंगी है, इस तरह का दोष उच्च वर्ण में आने का संभावना है, तो इससे बचना चाहिए, इस तरह के दोष को नहीं आना चाहिए, आने देना चाहिए, इस तरह का अहंकार नहीं आने देना चाहिए। किसी भी कुल में जन्म लेने वाले में प्राकृत गुणों का आरोप नहीं हो सकता कि नीच वंश में जन्मा है या ये है बहुत निम्न है। कभी कभी कह देते हैं अरे कुछ भी है तो नीच है ना, उसका स्वभाव जाएगा। अरे ठीक है, अब जानते हैं कि नहीं जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, स्वभाव जनित दोष रहने दीजिए, लेकिन जो उसके गुण है उसको देखिए कि वो भजन कर रहा है। ब्राह्मण लोग भजन नहीं करते, अंडा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वो तो भजन करने लगा ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण यदि आपका भजन नहीं करता तो उससे स्वपच कुत्ता का मांस खाने वाला श्रेष्ठ है। द्वादश गुणा जित रविंद कैसे है बिमकुम विप्रा द्विशद गुण, हाँ विप्रा द्विशद गुण जिता अरविंद नाभ पादा रविंद विमुख स्वपच वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनो बचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम नतु भूरिमान। तो विप्रा द्विशद गुण जिता द्विशद द्वि और छ 12 द्विशद गुण बारह गुणों से युक्त ब्राह्मण। बारह गुण क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मण को छह गुण होता है, दुगुना भी गुण हो जाए। छह गुण क्या है, वो वेद पढ़ता है, पढ़ाता है, यज्ञ करता है, कराता है, दान लेता है और देता है, ये छह गुण ब्राह्मण का है। तो इसके दुगुना बारह गुण हो जाए, फूंक दे तो आग लग जाए, मरे को जिला दे, कुछ और चमत्कार हो बात छह, ऐसे बारह गुण हो, फिर भी वह भगवान का यदि भक्त नहीं है तो उससे वह स्वपच श्रेष्ठ है। कुत्ता का मांस खाकर हजम करने वाला जाति में जन्मा हुआ, स्व तलाबी से है, स्व माने कुत्ता, पच माने पचाने वाला, हजम करने वाला, जो कुत्ता खाकर हजम कर ले उसको स्वपच कहते हैं। तो स्वपच वंश में जन्मा हुआ यदि भक्त भगवान की भक्ति करता है तो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान को अपना चित समर्पित करने के कारण अपने साथ अपने पूरे कुल को पवित्र कर देता है। और वह अहंकारी ब्राह्मण कि मैं ब्राह्मण हूँ, इस अहंकार में अपने आप को भी पवित्र नहीं कर पाता। प्रहलाद महाराज ऐसा क्यों प्रहलाद महाराज कह दिए, उसका कारण है, सोच कह रहे हैं कि प्रभु आपके सामने बड़े बड़े देवता लोग नहीं आ पा रहे हैं, सब भाग रहे हैं, और मैं एक नीच असुर वंश में जन्मा हुआ, आपके सामने जाने में कोई भय नहीं किया, चला गया। और आश्चर्य है कि उन देवताओं की प्रार्थना आप नहीं सुन रहे हैं और हमारे असुर वंश में उत्पन्न एक साधारण बालक की बात सुनने के लिए तैयार हो गए, आप क्रोध बंद कर दिए, और देवताओं का हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि आवे, लक्ष्मी का हिम्मत नहीं पड़ा, तो ये विशेषता कहाँ से आ गया। तो अनुभव करते हैं कि मैंने आपके चरणों में भजन किया है इसलिए आप मुझको इतना आदर दे रहे हैं। तो यह विशेषता है ना, किसी वंश में जन्मा हो तो बड़ों के उच्च वर्ण में जन्मे हुए लोगों में यह संभावना है, इसको बचाना पड़ेगा। ब्राह्मण वंश में जन्मा हुआ जीवन में कभी यह न बतलावे किसी को पूछने पर कि मैं ब्राह्मण हूँ, तब वह कुछ कुछ रक्षा कर सकता है। किस कुल के हैं, कौन से दूध हैं, दूध पानी से क्या मतलब, दिखाई नहीं देता कि मैं आदमी हूँ, भजन कर रहा हूँ, तिलक कंठी है, जप कर रहा हूँ, बस इतना काफी है। किस जाति के हैं, एक व्यक्ति हमको बहुत परेशान किया लेकिन उसको मैं समझा दिया, कन्विंस हो गया, आप किस जाति के हैं बाबा, तो मैं कह मैं आदमी हूँ, तो कह रहे हैं कि मैं ये तो देख ही रहा हूँ, मैं जाति पूछ रहा हूँ, तो हाँ वही जाति ही बता रहा हूँ, आदमी हूँ, गाय नहीं हूँ, बैल नहीं हूँ, घोड़ा नहीं हूँ, ऊंट नहीं हूँ, आदमी हूँ, ये जाति है ना, जीवों का अलग अलग जाति है, तो उसमें मैं आदमी दिख रहा हूँ कि नहीं। और आदमी में भी दो जाति है, स्त्री और पुरुष, तो मैं आदमी में पुरुष हूँ। तो कहा कि ये नहीं पूछ रहा हूँ, तो उन्हें क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कौन सा दूध है, दूध मतलब, तो कहते हैं कि कौन किस माँ का दूध पिए हैं, तो कहते सब लोग तो एक ही जैसा दूध पीते हैं, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या बतलाएं मैं आपको, और हमारे बात पर आप विश्वास करेंगे तो मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप किस जात के हैं, उसके अनुसार बताना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए हम अच्छा फिर कहते हैं अनेक जाति हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ये भी एक जाति हो गया है, तो इतना तो स्पष्ट है कि हम हिंदू हैं, अब कौन जाति जानना चाहते हैं, तो कहे कि अरे आप तो दिमाग खराब कर दिए, लेकिन आपका दिमाग खराब है ना। तो कहा कि बाबा बतला नहीं पाएंगे, मैं क्यों बतलाऊं, किस लिए, क्या जानकर करेंगे, इसमें जानने की क्या विशेष बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम भगवान के भक्त हैं, इतना दिख रहा है ना, ये पूछिए आप क्या भजन करते हैं, किस तरह किया जाए। तो कहे कि चलिए आप यही बतलाइए आप क्या भजन नहीं पूछ पाया, हम तुम्हें एकदम परास्त हो गया। तो और साथ में बस पर बैठे थे, आसपास के लोग भी इंटरेस्टेड थे, सब सुनने लगे, बस पर चल रहे थे, सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे करने लगा। तो फिर धीरे धीरे लोगों को बतलाएंगे ज्यों ही अहंकार, तो मान लीजिए आज का समाज तो इतना दूषित है कि अगर कहे कि हम ब्राह्मण है और कहीं नीच वंश का हो तो घृणा कर लेगा, अरे ब्राह्मण लोग ऐसे ही पाखंड करते हैं, तिलक करके लोगों को ठगने के लिए चल दिया है। अच्छा अगर ब्राह्मण है और हम कहते हैं कि हम भंगी हैं, देखो हद हो गया, कलयुग आ गया, भंगी लोग भी तिलक लगाकर चलने लगे, क्या किया जाए, इसको बदलाने से क्या फायदा है। वो किस जाति का है, वो किस एंगल से सोचेगा, तो हम उसको बताकर क्या करेंगे। अगर हम छोटे जाति को अपनी बताते हैं और कोई ब्राह्मण आसपास बैठा सुन रहा है तो कहेंगे देखो हद हो गया। तो ऐसे लोगों को भी समझाना पड़ता है, अब आप लोग मांस खाइए, अंडा खाइए, शराब पीजिए, आपके भाग में भजन नहीं है, तो फिर झगड़ा होगा। अगर कुछ दो चार श्लोक बतला दीजिए तो फिर झगड़ा। कह दीजिए कि बराह पुराण में लिखा है कि जिन असुरों का पूर्व युग में उद्धार नहीं हो पाया वही सब ब्राह्मण परिवार में आए हैं, कल युग में आते हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, श्लोक बोलकर उनको कह दीजिए, छिड़ जाएगा। हम नहीं लिखे हैं, व्यास जी लिखे हैं, वो भी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि जो असुर दूसरे युग में भगवान के हाथ से नहीं मारे गए, बच गए, वही लोग ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, इसलिए उनका असुर पाना छूटता नहीं है, वो शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, उसी में लगे हैं बेचारे। और जो दूसरे जाति में है वो प्रगति में है, वो भगवान का भजन कर रहे हैं, तो इस तरह से झगड़ा ही होगा ना। तो इसलिए ये जाति बुद्धि की बात मिटाना चाहिए, खासकर भारतवर्ष में बहुत भारी कलंक है जाति बुद्धि। जाति बुद्धि से वोट मांगते हैं, जाति बुद्धि से व्यवहार करते हैं, ठीक नहीं है। तो भक्तों में कम से कम नहीं होना चाहिए, समाज को तो खत्म करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आपस में भक्त समाज में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बस भगवान का भजन कर रहा है यह उसकी विशेषता है, इस पर ध्यान देना चाहिए, किसी तरह का आरोप ऐसा ना हो। या गोस्वामी परिवार का है, ऊंच वंश के लिए अहंकार वर्जित है कि यह अहंकार न करें कि हम ब्राह्मण है। अच्छा, नीच वंश के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक चेतावनी, प्रभुपाद जी भी इसको लिखते हैं। परंतु कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते न होते ही प्रारंभिक दशा में अपने आप को भक्त मानकर और यदि प्राकृत दुराचार करने लगे और ऊंच वर्ण में जन्मे हुए लोगों का अपमान करने लगे तो भक्ति मार्ग से च्युत हो जाता है, वो पतित हो जाता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे जाति में जन्मे लोग ब्राह्मणों का अपमान करने लगते हैं, वो भी अधिकार नहीं है, उनको भी एक अहंकार की संभावना है, यदि देखो ब्राह्मण लोग अंडा खा रहे हैं, हम लोग भजन कर रहे हैं, हम उनको क्यों प्रणाम करेंगे, हम उनका क्यों सम्मान करेंगे, ये लोग तो व्यभिचार कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ये अपना धर्म नहीं देख। अब इसको बोलने का अधिकार उसको नहीं है, उसको भजन करना है, कौन क्या कर रहा है उसके अपने को श्रेष्ठ मानकर और प्राकृत दोष बुद्धि करने लगे ठीक नहीं है। जो नहीं भजन कर रहा है उसके प्रति भी इस तरह का आरोप करने की जरूरत नहीं, बल्कि यह कहना चाहिए कि महाराज आप इतने पवित्र वंश में जन्म लिए हैं, हम लोग देखिए नीच वंश में जन्म लेकर भी वैदिक सिद्धांत को स्वीकार कर लिए, भजन कर रहे हैं, आप तो परंपरा से आपका तो खानदानी यही चीज है, फिर भी आप नहीं भजन कर रहे हैं, इस तरह से समझाना चाहिए, तो लज्जित होगा। आज जो ही आप यह कह देंगे कि देखो ब्राह्मण होकर गिर गया नीच, हमको प्रणाम करने के, हमको इसको प्रणाम करना चाहिए, हम बड़े हो गए ना, हम तिलक करते हैं, कंठी पहने हैं, हम भजन कर रहे हैं, तो यह इनके द्वारा भी सावधानी है, तो दोनों तरह से इस पर विचार कर लेना चाहिए। कुछ लोग ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के मद में आचार विचार को समझ नहीं पाते, सिद्ध मानते हैं अपने को और वैष्णवापराध कर लेते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भी इन्हीं सब सिद्धांतों को विस्तार से कहते हैं कि यह शुद्ध भक्ति जो आत्मा की सक्रियता है मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है, जो व्यक्ति भजन करते करते पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वही शुद्ध भक्ति कर सकता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भुआ कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत प्रकृति को गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त कर सकता है। अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है अनन्या भक्ति, भगवान में अनन्य भक्ति में जो रत है उसको भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावना मृत आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा में लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना मृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, विभिन्न प्रकार के भौतिक आसक्ति अभिलाषा को छोड़कर वह जब भजन करता है तो उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। भक्ति जो आत्मा की सही सक्रियता है, और जब कोई अनन्य शुद्ध भक्ति में संलग्न रहता है तो सगुणान समति तैतान वह श्रेष्ठ हो जाता है, मुक्त हो जाता है और भौतिक दशा में नहीं बंधता। भले वह शरीर से और भौतिक रूप से बद्ध लगे, अतः मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से न देखे। वास्तव में जब तक कोई भक्त नहीं होता वह दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता है, भक्ति करना पड़ता है। भक्ति समय बीतने से नहीं प्राप्त हो जाती है, वो सीरियसनेस होकर करने से प्राप्त होती है, गंभीरता से। नहीं कि 30 साल का भक्त है इसलिए वो श्रेष्ठ हो गया, बहुत ऐसे तो उसका सम्मान करना चाहिए कि वो बहुत दिनों से भगवान को स्वीकार किया। लेकिन भक्ति की गंभीरता अपनाने से प्राप्त होती है। जब तक कोई भक्त नहीं होता दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता, जैसा कि पिछले श्लोक में बतलाया गया, भक्त 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा अभक्त में अंतर नहीं स्पष्ट कर सकता। जो प्रारंभिक दशा में है उसको नहीं समझ में आता, वो मूर्ति को मानता है, अर्चन पूजन करता है, कुछ फूल कोई फल ला कर दे देता है, ठाकुर जी को प्रणाम कर लेता है, सामने कीर्तन में भाग ले लेता है, लेकिन भक्त की महिमा नहीं समझा है। कनिष्ठ के पास ये दोष होता है। मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्त को, अभक्त को और बेचारे दीनहीन को और भगवान में अंतर समझते हैं, जो कि आप कल सुनाया गया कि वह किस तरह व्यवहार करते हैं। भगवान से प्रेम करते हैं, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा स करोति तो मध्यम, भगवान से प्रेम करते हैं, भक्तों से मित्रता करते हैं, दीनहीन के प्रति दया करते हैं, और जो नास्तिक है उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उसकी बात नहीं सुनते, ध्यान नहीं देते। प्रभुपाद भी इस श्लोक को कोट कर रहे हैं, अपिश्चेत सुदुराचारो भयते मानन भक्त, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कोट किए हैं। तो इस प्रकार यदि कोई भक्त घृणित कर्म करे तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि भगवान के प्रेम और भक्ति में लगा है। यदि वह अनन्य भाग भक्ति करेगा तो उसका दोष निश्चित रूप से चला जाएगा, निश्चित रूप से। जैसे कहा जाए कि अर्धरात्रि में सूर्य देखा, संभव नहीं है। सूर्य देव दिखेंगे तो रात्रि नहीं रहेगी। उसी प्रकार जो अनन्य भाव से भजन कर रहा है उसमें दोष नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। शुरू शुरू में दिखता है, ऐसे वाल्मीकि जी प्रारंभिक अवस्था में नहीं सुधर पा रहे थे, साधु होने के बाद भी कमंडल इधर उधर करते थे, सभी लोग सो जाते थे, मठ मंदिर में रहते तो उनका कमंडल उनके पास, उनका कमंडल, क्योंकि रात को उनका नींद नहीं लगता था, आदत था चोरी करने का, तो जग जाते थे और जगने के बाद जप उप नहीं करके कुछ इधर उधर करते, तो सुबह जग कर साधु लोग, हमारा कमंडल किधर गया, तो क्यों ले गया अपने पास, झगड़ा करते थे, उनको थोड़ा मजा आता था। लेकिन धीरे 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 सत्संग करते करते सुनते कहते जप करते हुए सुधर गए, और सुधर नहीं केवल साधारण नहीं सुधरे, वो आदिक कवि हो गए, रामायण की रचना किए। तो यदि भक्त प्रारंभिक दशा में कुछ गलती करते हुए दिखता है या बहुत उन्नत अवस्था में भी दिख गया तो इतना समझना चाहिए कि वो भगवान का भक्त है, सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा है तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। और प्रभुपाद जी भी गोस्वामी मिल गया तो इस पर खूब लिखते हैं। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर गोस्वामी के परिवार को आधारित नहीं होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के संकेत पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एक अधिकार है। या हरिजन शब्द प्रभुपाद जी बहुत चिढ़ते थे गांधी जी के हरिजन शब्द से। कई बार अपने लेक्चर में कहे कि गांधी ने तो हरिजन शब्द को दूषित कर दिया। हरिजन भगवान के भक्तों को कहते हैं, नीचों को टाइटल दे दिया। जो भगवान की भक्ति ही नहीं करते उनको हरिजन कहा जाता है। बहुत चिढ़ते थे कि ये बहुत गलती की है। गोस्वामी उपाधि शुद्ध भक्तों का एक अधिकार है। जाति परंपरा से लोग गोस्वामी गोस्वामी कहते हैं, गोसाई, ब्रज में बहुत गोसाई लोग हैं, तो ये भांग पीते हैं, शराब पीते हैं, कुछ भी गलती करते हैं, लेकिन उनको गोसाई कहा जाता है। तो ये छह प्रकार, छह गोस्वामियों की बात करते हैं, जिसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतएव उन्होंने अपना नाम दबीर खास और साकर मलिक रख लिया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें फिर से गोस्वामी बना दिया। अतएव गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपने इंद्रियों को वश में कर ले, जो इंद्रियों का स्वामी हो। गो माने इंद्रियां, स्वामी माने कंट्रोलर। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक है। फलस्वरूप उसे गोस्वामी, स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वह गोस्वामी परिवार में न उत्पन्न हो। तो इसी अवसर पर प्रभुपाद यह भी कहते हैं कि जैसे समाज में नित्यानंद द्वैताचार्य की परंपरा है, उनको भी गोस्वामी कहते हैं, और जो इनसे बाहर है उनको ये लोग एक समान नहीं मानते, कहते नहीं ये गोस्वामी नहीं है। आचार्य परिवार के न हो, किसी सामान्य परिवार के हों तो उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। किसी को यह सोच कर कि वो ये अमेरिका का गोस्वामी है, इसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। प्रभुपाद जी के टाइम में होता था, आज भी बनारस के ब्राह्मण लोग और जो लोग हैं बहुत घृणा करते हैं। मिलेच्छों को संन्यास दे दिया भक्ति विदान, सन्यासी हो गए, गाय का मांस खाने वाले, सुअर का मांस खाने वाले, इतना बोलते हैं। उनके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए, नहीं यह सोचना चाहिए कि नित्यानंद वंशज ही गोस्वामी है। कृष्ण भावना में आंदोलन के अमेरिकी वैष्णव को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। प्रभुपाद अनुभव कर रहे थे, इसलिए लिखे हैं। कभी कभी लोग तपाक से अमेरिकी भक्तों से कह बैठते हैं कि उनका संन्यास या गोस्वामी उपाधि प्रमाणिक नहीं है, फालतू दंड लेकर घूम रहे, तुम गोस्वामी हो गए, ऐसे बोल दे तपाक तुरंत बोल देते हैं बिना भय के। तो इस तरह उनकी संन्यास या गोस्वामी प्रमाणिक नहीं है। श्री रूप गोस्वामी इस श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी आचार्य कुल के गोस्वामी अभिन्न है यह बात कर रहे हैं। इस अनुकूल भाव से इसको ग्रहण करना चाहिए। यह है अनुकूल भावना कि हमको अगर कोई भगवान के भक्ति में उन्नत है तो उनको गोस्वामी मानना चाहिए। दूसरी ओर भक्त को गोस्वामी को उपाधि प्राप्त हुई यदि उसका पिता ब्राह्मण नहीं है, एवं नित्यानंद अद्वैत प्रभु गोस्वामी में नहीं उत्पन्न हुआ है, तो यह सोचकर गर्वित न हो कि हम गोस्वामी बन गए, एक प्रतिकूल व्रजनात्मक। अब भक्त के लिए भी सावधानी है कि उसको यह नहीं सोचना चाहिए कि हम, उसे स्मरण रखना चाहिए कि जब ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है उसका पतन हो जाता है। भौतिक दृष्टि से गर्वित नहीं होना है कि हमारा, हम उन लोगों के बराबर हो गए। ये भौतिकता के बराबरी या बड़ापन की कोई बात नहीं है, उसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। कोई स्थान भक्ति में ईर्ष्या द्वेष का स्थान नहीं है। देखिए लिखते हैं कृष्ण, यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। निर्मत शरणम सताम परमम निर्मत शरणम, यह निर्मत शरणम सताम भागवत में आया है कि यह ऐसे भक्तों की संग है जहां पर कोई निर्मत सत्ता नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। ईर्ष्या कहते हैं किसी की बढ़ती मान प्रतिष्ठा लाभ पूजा आदि देखकर जलना, इसको ईर्ष्या कहते हैं। द्वेष में थोड़ा सा अंतर है, द्वेष उसे नीचा दिखाने का प्रयास करना। ईर्ष्या में देखकर जलते हैं कि अरे देखो नीच इतना बढ़ गया, धनी हो गया, इसको इतना मान मिल रहा है, लोग प्रणाम कर रहे हैं, उसको कष्ट होता है देखकर, उसको ईर्ष्या कहते हैं। आज जब प्रैक्टिकल कोशिश करने लगता है कि उसको हम नीचा दिखा दें, उसको दिखा दें कि वह बड़ा नहीं हम है, तो ये ठीक नहीं है, यह है द्वेष। ईर्ष्या से थोड़ा भिन्न हो जाता है, उसको तंग करने का कोशिश करता है। इसको इस रूप में समझाते हैं कि कोई अगर छोटा लाइन है तो उसको काट कर उसको छोटा करने की जरूरत नहीं है, मिटाकर। अगर आपको बढ़ाना ही है तो उसके निकट एक बड़ी लाइन खींच दीजिए, वो छोटा हो जाएगा। लेकिन यह भी भक्ति में ठीक नहीं है, स्पर्धा ठीक नहीं है। ये बहुत संसार में स्पर्धा ठीक है, इन भक्ति में दूसरे भक्त को दिखाने के लिए भक्ति नहीं की जाती है, भगवान की प्रीति लाभ करने के लिए भक्ति की जाती है। ऐसा नहीं कि ज्यादा लोग बड़ी प्रिय है तो गोप लोग भजन करते थे कि उनसे ज्यादा हो जाना है, दिखा देना है। उद्धव से या प्रद्युम्न अनिरुद्ध जो वहाँ के ज्यादा लोग हैं उनसे हमको बढ़ जाना है, इस तरह से ब्रजवासी लोग भजन नहीं करते थे। या पांडवों से ज्यादा लोग बढ़कर हैं तो इसलिए नहीं कि पांडव लोग बहुत कृष्ण से प्रेम करते हैं तो उनको दिखाकर जलाकर या उनको दिखाने के लिए देख लो युधिष्ठिर अर्जुन हम तुमसे ज्यादा काबिल है, यह नियत भक्तों का नहीं होना चाहिए। यह मार्ग नहीं है, स्पर्धा में नहीं है। तो ईर्ष्या द्वेष से रहित कृष्ण भावनामृत संघ है, तब गोस्वामी उपाधि दी जाती है। जब ही कोई ईर्ष्या करता है वो परमहंस पद से गिर जाता है। किसी को किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण को छोटे जाति से नहीं, छोटे को ब्राह्मण से नहीं, किसी के नहीं। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोष पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरणों में अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरणों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु इसे मतवाला हाथी कहते हैं, जो भक्ति लता को समाप्त कर देता है। तो अतएव इस पर ध्यान रखना चाहिए कि किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव मानकर उनसे कुछ सीखना चाहिए, और अपने से श्रेष्ठ का तो आदर करना ही है, उनकी आदर देने के लिए उनसे उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार होना चाहिए। और श्रेष्ठ वैष्णव का कर्तव्य क्या है कि कनिष्ठ को हर तरह से सहायता करनी चाहिए। दो दिन से आया है और काबिल बन रहा है, ऐसा नहीं चलो इसको सिखाएं बेचारा नया है। स्नेह की भावना से छोटे के प्रति भाव होनी चाहिए, और छोटों का कर्तव्य है बड़ों से आदर पूर्वक जिज्ञासा करें, उनकी सेवा करें। इस तरह से श्रेष्ठता और निकृष्टता का वर्णन किया गया। तो मनुष्य को भौतिक दृष्टि से ही शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से नवदीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है, ठीक नहीं है। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए। कभी कभी तो बिल्कुल नहीं समझ में आता, वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझा, ये छोटा क्या बुझेगा, बड़ा भी नहीं बुझता है। बड़े लोगों को भी समझ में नहीं आता कि उसकी क्या क्रिया मुद्रा है, क्यों ऐसा कर रहा है। कामुकता नहीं है लेकिन विवाह करता है, संतान उत्पन्न करता है। कोई क्रोध नहीं लेकिन हजारों ब्राह्मणों का वध कर रहा है, इतना भारी हिंसा देख कर नहीं समझा जा सकता। अर्जुन में क्रोध नहीं था, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो युद्ध किए। प्रहलाद महाराज में कोई कामुकता नहीं था, फिर भी विवाह किए प्रभु की प्रसन्नता के लिए। पुंडरीक विद्यानिधि के पास चैतन्य महाप्रभु गए एक बार भक्तों को लेकर, सब विरक्त भक्तों को साथ लेकर। तो पुंडरीक विद्यानिधि एक बड़े ही ठाट बाट से रहने वाले, खूब सोने हीरे की अंगूठी पहनकर, एकदम मटका सिल्क पहनना, एकदम सेंट पेंट, और खूब बाल उल रख कर सुगंधित तेल लगाना, और युवतियों को सेवा में रखे थे, एकदम 15-16 वर्ष की लड़कियों को उनके कंधे पर हाथ रख करके चलते थे। इतना ठाट बाट कपड़ा, घर मकान पलंग सब चक चक, पान खाते थे, क्या क्या ठाट था। चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए और जा करके दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके इतना रोने लगे कि दोनों दोनों को भिंगा दिए। महाप्रभु भी रो रहे हैं और पुंडरीक विद्यानिधि भी, अद्भुत। और उसमें कुछ विरक्त लोगों की तो हालत गंभीर हो गई, ये क्या कर रहे हैं इस भोगी कामी लंपट के पीछे, महाप्रभु इतना दीवाना है, कौन भक्ति कर रहा है, इसके प्रत्येक अंगुलियों में अंगूठियां हैं, एकदम हीरा मढ़ा हुआ सोने का सेंट है, क्या क्या है। और इससे महाप्रभु मिल रहे हैं, महाराज प्रताप रुद्र से मिलना मना कर दिया, पुंडरी के घर जाकर मिल रहे हैं। तो अच्छा नहीं लगा कुछ भक्तों को, तो और लोग तो सह भी लिए, किसी तरह अपनी बुद्धि को समझा लिए, लेकिन एक नहीं समझ पाए, दामोदर पंडित। क्या नाम था? दामोदर पंडित है, आज जगदानंद गदाधर, गदाधर, हाँ गदाधर जी नहीं समझ पाए। वो चर्चा करने लगे, बोले महाप्रभु को हो क्या गया है, ये क्या कर रहे हैं, इतने विषयी के पास जाकर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो कहे कि चुप चुप ऐसी बात मत करो, महाप्रभु समझते हैं हम उनकी दृष्टि से नहीं देख सकते, उनकी दृष्टि जो है। तो धीरे धीरे महाप्रभु के पास से बात आ ही गई घूमकर कि इस तरह की दशा को प्राप्त किया गदाधर। तो कहे कि अच्छा, महाप्रभु इतना असंतुष्ट हुए और कहे कि जाकर यह प्रायश्चित इस अपराध की मार्जन तब होगा जब जाकर पुंडरीक से तुम दीक्षा लोगे, तुम उनके चरणों में गिर कर शिष्यत्व स्वीकार करोगे तब ही दोष मिटेगा, और दूसरा उपाय नहीं है। तब जाकर पुंडरीक विद्यानिधि के पास क्षमा याचना किए, कहे कि नहीं ऐसे महाप्रभु आप ठीक सोच रहे हो, मैं इसी स्टैंडर्ड का हूं, महाप्रभु की दयालुता है, कृपालुता है, उनकी दयन्य, और महाप्रभु इतना मान दिए, इसको याद करके रोने लगे, मैं नीच हूं, ये हूं, वो हूं। देख कर तो उनका गदाधर का सारा अहंकार चला गया, किस स्टैंडर्ड का है, किस लेवल का है पुंडरीक, समझ में आ गया। तो इस प्रकार वैष्णव के क्रिया मुद्रा बाहरी लक्षणों से नहीं समझ में आता, और कभी कभी अपनी दृष्टि से देख देते हैं। एक थे दामोदर जो महाप्रभु पर भी दोषारोपण कर दिए, एक ज्योति के विधवा ब्राह्मणी के लड़के को इतना प्रश्रय दे रहे हैं, दामोदर शायद दामोदर पंडित थे। तो दामोदर पंडित कहने लगे कि आप इस बात को मूल्यांकन नहीं कर रहे हो, जानते हो ये लड़का किसका है, एक विधवा ब्राह्मणी की है और बहुत सुंदरी है, ज्योति है, उसका पति मर गया है और आप भी परम सुंदर हो, तो आप लड़के को इतना प्रश्रय दे रहे हो, दिन दिन भर आपके पास बैठता है, तो दुनिया का मुंह नहीं बंद कर सकते हो, लोग यही कहेंगे कि ये लड़के का सम्मान देने का कारण है कि ये सुंदर युवक उस ज्योति में आ सकता है। महाप्रभु सोचे लो इसको तो हो गया पीलिया रोग, अब इसको कैसे किया जाए। तो कहे कि वास्तव में आप ठीक कह रहे हो दामोदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं, मानता ही नहीं, उसको किसी तरह समझाना चाहिए, आ जाता है, कहते नहीं नहीं आप प्रश्रय देते हो इसके कारण आता है, तो बच्चों का स्वभाव है जो सब प्यार देगा उसके पास आएंगे, तो बच्चे में दोष नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहेंगे इस भय से। तो महाप्रभु कहे कि तू बड़ा गंभीर चश्मा पहन लिया, जब हमारे ऊपर इस तरह का दोषारोपण करेगा तो फिर और लोगों पर भी करेगा। तब एक बार दूसरे ढंग से एक भंगी से कहते हैं, दामोदर आप जैसे व्यक्ति की आवश्यकता नवदीप में है, वहां भी एक ज्योति है सच्ची माँ के साथ, वहां कोई ऐसा व्यवहार न हो, आप वहीं जाइए माता जी के साथ रहिए, कोई न कोई व्यवहार से उनको भेज दिए, वहां से आउट कर दिए। देखिए इस तरह उनको अपराध लग ही गया, महाप्रभु का सानिध्य छूट गया, भेज दिया। तो दोषारोपण कर तो देते हैं, लेकिन आज तक वैदिक इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा हुआ है जिस पर अपराध न लग गया हो? शिव जी पर उंगली उठाने से चित्रकेतु को असुर जोनी में जाना पड़ा, ब्रह्मा जी पर हंसने के कारण शिव जी के परिकरों को, कुछ देवताओं को असुर जोनी में जाना पड़ा, जो हिरणाक्ष के पुत्र के रूप में देवकी के पुत्र बनकर आए थे। ब्रह्मा जी जब सरस्वती के प्रति कामुक दृष्टि से हो गए तो लोग हंसने, अरे अरे ब्रह्मा को देखो देखो, तो हंसने के कारण हो गया। जो लोग बहुत बड़े थे, वशिष्ठ आदि जो बड़े, वे बड़े विनम्र भाव से झुक करके प्रार्थना किए ब्रह्मा जी को, तब होश हुआ ब्रह्मा को कि हम गलती में हैं। लेकिन जिन लोगों ने हंसा या कुछ व्यंग किया उनकी घाटा हुई। तो इस तरह से वैष्णव के सुधार के फेर में बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। हमारी दृष्टि बहुत नीची है, हम उस दृष्टि से देखकर भक्तों को नहीं सुधार पाएंगे, बल्कि अपने पर अपराध लग जाता है। तो क्यों होता है, क्यों क्यों क्यों? तो लोग क्यों की दृष्टि तो भगवान पर भी है, केवल मनुष्यों पर, हर समाज में हर युग में ऐसे लोग होते हैं जो दोषारोपण करते हैं। कृष्ण को भी दोषी समाज के सामने घोषित किया शिशुपाल, कि यह किसी बहुत छोटे स्तर का है और इसको क्यों सर्वश्रेष्ठ पूजा की जाएगी। भगवान में भी दोष निकाला, तो वैष्णव में दोष निकालने वाले तो बाहर के लोग हैं ही, कम से कम वैष्णवों को नहीं होना चाहिए, ऐसे दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्या किया जाए, जो लोग नहीं भजन करते हैं उनके अंदर ये दोष होता है। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नवदीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं अपने विषय में, जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रसारित करने का असाधारण कार्य की महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। वे हम सबों को अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करते हैं। हमें उनके इन दुष्ट कार्यों और उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। एक शक्ति संपन्न पुरुष जो भगवान की गोपनीय सेवा में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त न हो, तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावना का प्रचार नहीं कर सकता। जब कोई इस कार्य से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है, इस प्रकार आलोचना करता है, तो अपराध है, वैष्णव अपराध अत्यंत बाधक है, भक्ति के घातक है। जो कृष्ण भावना में प्रगति करने के इच्छुक है, उन्हें ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति वैष्णव के चरणों पर अपराध करता है, वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा सकता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, वह शक्ति संपन्न वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार के अनुशासनात्मक कार्यवाही भी अपराध है। अनुशासनात्मक का अर्थ है कि अपने को काबिल मानकर कुछ आदेश करे कि ऐसा करो वैसा करो, या फिर उसे उपदेश देना और उसके त्रुटियों में सुधार करने का अपराध पूर्ण प्रयास करना। आप ठीक नहीं करो, इसमें थोड़ा सुधार कर लो। नवदीक्षित वैष्णव या प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों पर आधार पर अंतर करना चाहिए किस तरह का है। प्रभुपाद दीक्षा से अंतर नहीं कर रहे हैं, उसके कार्यों से, कौन अभी कनिष्ठ है कौन मध्यम उत्तम है उसके व्यवहार से देख लेना चाहिए। 20 साल से दीक्षित है फिर भी उसका स्टैंडर्ड अभी कनिष्ठ है तो कनिष्ठ है, उसके कार्यों से उसकी अंतर कर लेना चाहिए। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर रहता है और नवदीक्षित सदैव उनका शिष्य माना जाता है, सीखना चाहिए। न तो शिष्य गुरु को उपदेश दे और न गुरु ऐसे व्यक्तियों को उपदेश ग्रहण करे जो उनके शिष्य नहीं है। इस छठे श्लोक में श्री रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। तो इस प्रकार प्रभुपाद की टीका हम पढ़े, तो इसमें बहुत सारी बातों पर आलोचना हुई, परस्पर वैष्णव के संबंध में किसी प्रकार का प्राकृत दोष या दैहिक दोष का आरोप नहीं करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए ताकि हम अपने भक्ति में प्रगति कर सकें। इसी तरह केवल उपदेश की भावना बनी रहे तो हम दोष बुद्धि करके अपना ही हानि कर लेंगे। तो इसमें कुछ बातें जो आप लोगों को भी कोई चीज व्यवहार में अच्छा लगा हो, अभी तीन श्लोक, पहले के दो श्लोक और आज इसमें केवल वैष्णव के विषय में ही परस्पर की बातें हुई अब तक। इन तीन श्लोकों में जो ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति भुक्ते भोजयते चैव सर्वे प्रीति लक्षणम, वहां से लेकर और इस श्लोक में, इसके पहले कल के श्लोक में भी, तो इसमें से जो व्यवहारिक बातें, प्रैक्टिकल बातें बताई गई, उसमें और भी जो आप लोगों के दृष्टि में आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो जो इस सत्र में नहीं कहा गया, तो इन तीन श्लोकों में जो वैष्णव संबंध की बातें कही गई आपस में, इसमें कुछ विशेष बात जो आप समझते हो तो बतला सकते हैं आप लोगों के बीच में, जिसको अच्छा लगता हो, जो हम नहीं कह पाए, जिसकी चर्चा आलोचनीय है, कमेंट्री किया जा सकता है, तो आप लोग थोड़ा चर्चा करें, अभी काफी टाइम है, फिर समय मिलेगा तो इसके आगे भी चर्चा करेंगे। कुछ विशिष्ट बातें आपको समझ में आ रही हो परस्पर व्यवहार में, प्रैक्टिकल रूप में, ये तीनों श्लोक एकदम वैष्णव के व्यवहारिक जीवन की बातें हैं जो हमारे सदाचार में होना चाहिए। जो आप समझ रहे हैं कैसे व्यवहार करना चाहिए उसको बतलाइए, इसके कल भी जो श्लोक हुआ उस पर भी विचार कर लीजिए। कृष्णेति जस्य गिरितम मनसा ध्रियेत दीक्षात दीक्षा से चेत प्रतिभिश्च भजन्त मीशम सुसुर सया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदय मीपित संगलब्ध्या। इसमें विभक्त संघ की ही बात कही गई कि कैसे कैसे भक्तों से क्या संबंध होना चाहिए। जिसके जिह्वा से एक बार कृष्ण नाम निकल रहा है उसका मन से आदर करें, जो दीक्षा लेकर नियम पूर्वक भजन करता है उसको प्रणाम आदि के द्वारा आदर करें, और जो उत्तम अधिकारी है निंदादि से शून्य होकर अनन्यता पूर्वक सिद्धांत को समझकर, उत्तम अधिकारी की तीन विशेषता को कहते हैं भजन्य विज्ञ और अनन्यम और निंदादि शून्य, तीन विशेषण है। वो भजन के सिद्धांत को सम्यक रूप से जानता है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, कभी छोड़ना नहीं चाहता और दूसरे की निंदा नहीं करता। तो ऐसे भक्त का संग हृदय से ईप्सित होकर इच्छा होनी चाहिए ऐसे भक्त की संग करे, और संग कैसे करें, सुसुर सया सेवा करके। तो एक कल के श्लोक में बताया गया, और ददाति प्रतिगृहणाति आप समझ ही रहे हैं और आज की बात समझ ही गए कि भक्तों के शारीरिक और स्वभाव जनित दोष पर विचार न करके उनका सम्मान करना चाहिए। तो आप लोग कुछ कहना चाहते हैं असीम कृष्ण जी? अपने अंदर के दोष को देखना चाहिए। जब हमारे व्यवहार से वैष्णव संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कि हम में दोष है। दूसरे भक्तों से पता लगता है कि हमारे अंदर दोष है, हमको अपना तो समझता नहीं। जैसे आंख अपने को नहीं देख पाती है लेकिन दूसरे आंख पर कोई गड़बड़ी है, यहाँ कुछ खर या धूल आ रहा है तो हम देख सकते हैं, तो दूसरे वैष्णव लोग कृपा करके अगर बतला दें तो अच्छा है, नहीं तो इनडायरेक्ट भी आ ही जाता है। तो इनडायरेक्ट निंदा को भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए। डायरेक्ट को तो आदमी सुन ही लेगा लेकिन तब समझा जाता जा सकता है कि हमारे अंदर भी दोष है, और उस दोष को प्रयास पूर्वक कोशिश करना चाहिए। यद्यपि स्वभाव जनित दोष जल्दी नहीं मिटता है लेकिन उसको प्यूरिफाई किया जा सकता है, कभी समय पर उसका उपयोग किया जा सकता है लेकिन हर जगह नहीं। अगर लोभ है, आप कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? हरा प्रभु नहीं तो रिजेक्ट जानते हैं दोनों महत्वपूर्ण बात है। जो ये जो चित्रकेतु की घटना है उस पर चक्रवर्ती ठाकुर ने एक लेख लिखा है, पूरी घटना पर पूरा एक पृष्ठ में लेख लिखते हैं कि चित्रकेतु ने गलती किया। किसने गलती किया कि चित्रकेतु को श्राप मिल गया? चित्रकेतु की गलती है कि शिव जी की गलती है कि पार्वती की गलती है? गलती तो किसी का हुआ होगा ना, किसका गलती है? शिव जी पत्नी को गोद में लेकर बैठकर कथा कर रहे हैं तो यह शिव जी की गलती है? और यदि गलती है तो चित्रकेतु को श्राप क्यों मिला? गलती जिसका है उसको दंड मिलना चाहिए। अच्छा मान लीजिए शिव जी को ध्यान नहीं आया, वो साधु संत आ गए तो कथा में लीन हो गए, ध्यान नहीं दिए कि हटो अब हट जाओ यहाँ से, मना नहीं किए, तो फिर पार्वती का गलती है कि जब सब लोग आ गए तो उनके जांग पर नहीं बैठना चाहिए, हटना चाहिए, अब बैठी है तो अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए, चित्रकेतु को श्राप नहीं देना चाहिए। आ चित्रकेतु की भी गलती है, जब पहले से नारद अंगिरा जैसे लोग बैठ कर उनकी कथा सुन रहे तो इनका क्या अधिकार है बोलने का, उनको भी नहीं बोलना चाहिए। तो गलती सबकी है, शिव जी की भी कुछ गलती है, पार्वती की भी कुछ गलती है और चित्रकेतु की भी गलती है। अगर चित्रकेतु की गलती नहीं तो फिर कहते हैं, एक तर्क देते हैं कि चित्रकेतु यदि गलत बात बोले, शिव जी पर उंगली उठाए कुछ बोल दिए, लेकिन उसी समाज में एक से एक सीनियर बैठे हैं, अंगिरा, अगस्त, देवर्षि नारद जो उनके गुरु लोग, लेकिन किसी ने अपने शिष्य के गलती को टोका नहीं, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर चित्रकेतु गलत बोले होते तो नारद जी तुरंत मना करते। अगर कोई शिष्य गलत बोलने लगे किसी समाज में तो गुरु चुप, ऐसा क्यों बोल रहा है? तुरंत पिता का, गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को मना करे, अपने बेटे को मना करे अनुचित बोलने से, तो फिर वो लोग बोले नहीं। तो जब कोई बोला नहीं तो इसका अर्थ यह है कि सबको ये दोष दिखाई दे रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था कि शिव जी को कोई बोले। अगर चित्रकेतु बोल दिया तो सब लोग मन मन खुश थे कि ठीक किया, टोक दिया था। तो ये तो अनुमोदन कर रहे, मौन होकर सबने अनुमोदन किया, चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे कि सब लोगों ने चित्रकेतु का अनुमोदन किया। अगर मना नहीं किया तो इसका मतलब उनको अच्छा लगा। अच्छा तो पार्वती गलती कर दी, श्राप देना ठीक नहीं था, वो तो उचित बात बतलाए तो फिर श्राप क्यों दे दी? तो कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार अपने गुरुजन का, बड़े का अगर सीधा कोई अपमान करता है तो तीन काम करना चाहिए, उसका जीभ काट लें समर्थ हो तो, या वहां से भाग जाएं, अथवा आत्महत्या कर लें, कुछ तीनों में तो एक करना चाहिए। तो पार्वती के पास समर्थ था, छुरा उठाई काट दी उनका जीव। नहीं तो गोद छोड़कर भागना चाहिए। तो कहते पार्वती क्यों भागे? वो शिव जी के गोद से बढ़कर सुंदर आसन का क्या होगा जहां वो बैठे, उन्हें पति के गोद में बैठी है, वे लोग उनके घर में आ गए तो उनका क्या दोष है? कोई उनका घर तो है नहीं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, अपने पत्नी के साथ बैठे हैं तो दूर से दिखाई दे रहा था ना, क्यों वहां आए? उनका जो आकर सत्संग करने लगे उनकी गलती है ना, देख कर दूर हटना चाहिए, तो आ गए तो पार्वती क्यों हटे? जब पति नहीं मना कर रहा है तो फिर वो क्यों हटे? अच्छा इसलिए पार्वती गलती में नहीं है, और शिव जी पर उंगली उठाया इसलिए उनको श्राप दे दिए भी उचित की। तो अरे आखिर हुआ क्यों, क्या क्या किसकी गलती है? जब किसी की गलती नहीं है तो एकदम फोकट में बेचारा श्राप क्यों सहा, कमजोर है। इसलिए कहते नहीं, यही भगवान की इच्छा थी। अंत में लिखते हैं ये घटना भगवत इच्छा से हुई। कभी कभी कोई बात भगवत इच्छा से हो जाती है, उसमें किसी का कारण नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता, सब प्लानिंग पूर्वक भगवान ही कर देते हैं। जैसे जय विजय का श्राप, चित्रकेतु का श्राप, और एक वहाँ चैतन्य महाप्रभु के बच्चे का स्नेह दे रहे हैं, ऐसा करके लोग को शिक्षा दे दिए कि इस तरह की सन्यासी को गलती नहीं करना चाहिए, हरकत नहीं करना चाहिए, सन्यासी को लोक से भी बचना है, वेद से ही नहीं। अब प्लस इतने बड़े व्यक्ति के प्रति उंगली उठाने वाला, दोष दृष्टि देने वाला को थोड़ा दंड भी होना चाहिए, दूर चला गया है। ये तीनों भगवत इच्छा से हुआ है। जय विजय को श्राप भी, चित्रकेतु को श्राप और दामोदर पंडित को नवदीप भेज देना स्वीकार करके महाप्रभु भेज दिया। अब स्वीकार करके उस संदर्भ में नहीं भेजे, अब दूसरे दिन एक भंगी से उनको भेज दिए, ये दोष दृष्टि का चश्मा पहना है। बाद में रियलाइज करेगा कि देखो हमको महाप्रभु का संग छूट गया, वास्तव में उंगली नहीं उठाना चाहिए, कुछ प्रायश्चित भी हो जाए। तो ये सब कभी कभी जो भगवत इच्छा से हो जाती है उस पर कोई नियम कानून क्यों क्या नहीं होता। भगवान के साथ क्यों कब किस लिए प्रश्न खत्म हो जाता है। महाभारत में घटना है, कंस का जब चक्का फंस गया तो भगवान अर्जुन से कहते मारो इसी समय। अर्जुन कहते इस समय आए क्या कर्ण का ना, मैं किसको अर्जुन कह दिया, कंस कह दिया, सॉरी वो तो कर्ण का, तो कर्ण मुझे ध्यान नहीं आया बोल दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है ध्यान नहीं आता है। तो कर्ण का जब चक्का फंस गया तो भगवान कहे कि अर्जुन इसको मारो अभी। तो अर्जुन कहते अभी निहत्था है धरती पर है, तो कहते मैं कह रहा हूँ मारो, फिर तुम पूछने लगता है, ये पूछने की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ इसी समय मारो। दो चार बार कह दिए भगवान तो अर्जुन संभलते संभलते एक मार मारे है। तो कर्ण कहता अरे अरे विश्व विजेता अजय विजेता अर्जुन ये क्या कर रहे हो, मैं अपना रथ निकाल रहा हूँ तुम मुझ पर बाण मारने लगा। तो अर्जुन फिर संभल गए। तब भगवान कहते अरे शुरू में कहा कि शिष्यते हम साधिमाम तो हम प्रपन्न मतु चेला हो गया कर्ण का, मैं गुरु हूँ तुम शिष्य हो, मैं कह रहा हूँ मारो। तुमने कहा था ना कि मैं आपका शिष्य हूँ, जो कहेंगे वो करूंगा, तो मैं कह रहा हूँ कि मारो। तो फिर अर्जुन मारने लगे। तब वो कर्ण भगवान से पूछता है कि हे धर्म रक्षक, आप धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, अधर्म को नाश करते हैं, साधु की रक्षा करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इस तरह की अधर्म निहत्था पर बाण चलाने के लिए एक वीर को उत्साहित कर रहे हैं। तब भगवान वहां कहते हैं धर्म की परिभाषा, महाभारत के उस प्रसंग को पढ़ सकते हैं। और भगवान कहते हैं कि सुन लो कर्ण, धर्म ध्वजी नीच, आज तुमको धर्म की परिभाषा आ गई। जिस समय सात सात महारथी मिलकर अभिमन्यु का वध किए निहत्था का, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था। जब सोए अवस्था में पांडवों को जलाने की प्लानिंग हुई उसमें तुम नहीं था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था। एक सती साध्वी अबला को भरी सभा में वेश्या कहते समय तुमको लज्जा नहीं आई, उस समय धर्म कहां था जिसको नग्न देखना चाहते थे तुम लोग। अब तुम धर्म की परिभाषा बतला रहे हो, धर्म और अधर्म की परिभाषा सुन लो कान खोल कर मरते समय, या आज तो तुमको मरना है। मैं जो कहता हूँ वो धर्म है, मैं जो चाहता हूँ वो धर्म है, मेरी इच्छा के विरुद्ध जितने काम है वो धर्म है। तो कभी कभी जब भगवान की इच्छा हो जाती है तो धर्म धर्म खत्म, अब उसमें क्यों क्या नहीं, भगवान की इच्छा के अनुसार जो किया जाता है वो धर्म। तो मेरी इच्छा है कि तुमको इसी अवस्था में मारा जाए, यही धर्म है, इसलिए अर्जुन तुम अपने धर्म का पालन करो, इस नीच को अभी मारो। तो अब इस अवस्था में धर्म अधर्म की परिभाषा वहां महाभारत में भगवान बताए। रश्मि रथी में दिनकर जी भी लिखते हैं इस बात को कि तुम धर्म ध्वजी हो, तुमको इस अवस्था में मारना है। तो फिर भगवान के विषय में शंका नहीं होता, कुछ विशेष कारण होता है, अब उसमें क्यों क्यों नहीं लगता। और कोई सलाह, परस्पर व्यवहार की बात है, तीन श्लोक जिस पर हम लोग विचार किए अभी पीछे, तो इस पर वैष्णवों के परस्पर व्यवहार की बातें कही गई, ददाति प्रतिग्रहणाति से लेकर यहाँ तक। तो फिर और भी जिसे हमारे अंदर दोष न आवे या कुछ कोशिश जो आप अनुभव किए हैं 10-20 वर्ष भजन करके, उसको पूछ सकते हैं या बतला सकते हैं। मैं केवल प्रश्न करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बतलाने के लिए भी कह रहा हूँ। हाँ बोलिए। नहीं वहां चैतन्य चैतन्य चैतन्यमृत में है ना कुछ दिन के लिए आए क्या। हाँ भेज दिए आ गए होंगे दूसरी बात है, लेकिन तत्काल कुछ देर के लिए
साल में एक बार आने के लिए बोले
क्या कुछ। हाँ कुछ दिन के लिए भेजे थे, मैं परमानेंट नहीं कह रहा हूँ। वहाँ जो वर्णन है भेज दिए, उस घटना के तुरंत बाद भेज दिए, लेकिन वो आना निषेध नहीं था कि आप कभी आइए ही मत। और आप क्या कर रहे थे? मैं केवल प्रश्न करने को नहीं कह रहा हूँ, आपका अनुभव भी सुनाना चाहता हूँ सब लोगों को। आप क्या अनुभव किए हैं व्यवहार में? नहीं नहीं देखिए, निंदा उसको निंदा कहते हैं जब उसके हित की चिंता न करके केवल मजा के लिए करते हैं। अगर हित की भावना है कि उसका सुधार हो तो भी निंदा नहीं है, और हित की भावना है तो दूसरे से कहने से उसको क्या फायदा होगा। अगर आप किसी का हित करना चाहते हैं, इसमें किसी भक्त का नाम रख लीजिए कि उसमें गलती है उसका सुधार हो, तो उससे न कहकर दूसरे से कहने से उसका क्या लाभ होगा। कि तो उससे कह सकते हैं और उसके लीडर से कह सकते हैं, तो अगर लीडर से कहते हैं या उससे कहते हैं तब निंदा नहीं है, अथवा गुरु कुछ किसी के दोस्त को बतलाता है तो निंदा नहीं है, उसका शरणागत है, उसका कर्तव्य है उसका सुधार करना। अथवा गुरु के द्वारा जो डिपुट है, जो उसके लीडर है, वह उसकी निंदा करे कि तुम इस तरह की गलती न मत करो, सो रहे हो, ये मंगला आरती करना है, जप करना है, तो ये व्यवहार तुम्हारा ठीक नहीं है। गुरु के द्वारा जो नियुक्त लीडर है वह अगर उसका दोष बताता है तो निंदा नहीं है। निंदा तब हो जाता है जब सुधार की कोई भावना नहीं, केवल नीचा दिखाने के लिए ईर्ष्या से या उसको कुछ डाउन करने के लिए कहीं करते रहते हैं, उसकी बेइज्जती हो जाए, लोग उसको बुरा माने, यह नियत जब आ जाए तब निंदा है। तो निंदा तो होती है, लेकिन उस निंदा उसको नहीं कहते हैं जो सुधार की भावना से की जाए। हाँ, अब मैनेजरों की दोस्त को उनसे बतला सकते हैं, उनको मैनेजर के तरफ से भी एक ऑप्शन खाली होना चाहिए कि अपना दोष सुनने के लिए उनको तैयार होना चाहिए कि अगर हमारे अंदर गलती है तो कभी वो कंप्लेन करने का अधिकार किसी भक्त को होना चाहिए कि वो बतावे कि आपकी गलती है, ये ठीक हमको अच्छा नहीं लगा। तो वहाँ अगर वो ऑप्शन दे रहे हैं तो उनकी बात सुना जा सकता है, उनको कंप्लेन किया जा सकता है। अब उनकी गलती को आपस में चर्चा करना ही निंदा है, अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक नहीं है। उनसे बतलाइए कि आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे, हमको अच्छा नहीं लगा, और उनको भी इसके लिए तैयार होना चाहिए कि हाँ कोई हमें गलती हो रहा हो, अपने को परफेक्ट मान लेना ये अपराध हो जाएगा, और इसी कारण से इस तरह की निंदा होती है। प्राय हम आपस में नहीं समझ पाते, एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो जब नहीं सुनने के लिए तैयार है तो अलग चर्चा करने लगते हैं, तो अलग चर्चा करने में अपराध होता है और अपराध दोनों तरफ से होने लगता है, ये ठीक नहीं है। इस पर इसका खुला ऑप्शन होना चाहिए कि हम सुन सकें, सुनने की हमारे अंदर क्षमता हो अपनी गलती, और उस भक्त को भी सावधान रहना चाहिए कि हम उसके विषय में छोटे का कोई अधिकार नहीं है बड़ों के विवेचना करने का आपस में। कोई आपस में आप लोग एक मीटिंग ऊपर हो गया और वो किसी तरह से लिंक आउट हुआ तो फिर आप बीच में कौन मीटिंग करें, ये तो निंदा है ना, ये तो अपना पतन है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम जन्म जन्मांतर से इसी में रह चुके हैं, हमारा अनुसृत स्वभाव है, तो दूसरे की निंदा करने में हमको मजा आता है, विशेष टेस्ट मिलता है, तो समझना चाहिए कि हमारा स्तर बहुत कम है। यद्यपि वो भजन में बाधक है, हमारा भजन ह्रास हो रहा है, फिर भी हमको मजा आ रहा है, तो समझना चाहिए कि हमारा स्तर बहुत कम है, हम ठीक ऊंचे स्तर पर नहीं है, इसलिए इसको हम सुनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। कुछ दिक्कत है तो अपने सीनियर से पूछ लेना चाहिए, कुछ मन में आ रहा है तो अपने लीडर से, हमारे मन में इस तरह का दोषारोपण आ रहा है, कैसे हम सुधार करें, और अपने किसी और सीनियर सीरियस गंभीर भक्तों से चर्चा करनी चाहिए, अपने से छोटे से चर्चा नहीं करनी चाहिए। नहीं, जिज्ञासा से पहला महत्व है, किसी को कुछ इस विषय में कहना है कमेंट्री, उसकी पहली महत्ता है, तो नहीं आपकी बात नहीं, और किसी के मन में कुछ आ रहा हो वो पहले कह लीजिए, जिज्ञासा बाद में। एक एक हाँ उनको बोल लेंगे। क्या क्या? नहीं नहीं, वो जमराज के रेंज से बाहर है, वो जमराज भागवत के छठवें स्कंद के तीसरे अध्याय में कहते हैं, जमदूत प्रश्न कर दिए कि पहली बात तो आप बताइए कि आप ही सारे दुनिया के कंट्रोलर हैं, उनके पाप कर्मों का दोषों के कंट्रोल करने वाले की दूसरा भी है, कहीं बात क्या है, पहले घटना बताओ। नहीं, आप पहले ये बताइए कि आप ही सबके दोषों के कंट्रोलर हो कि दूसरा भी है, प्रणाम भी नहीं किए जमदूत इतना क्रोध में थे कि सीधे कंप्लेन किए, छठवें स्कंद के तीसरा अध्याय के प्रारंभ में ही। तो कहते हैं कि बतलाओ, तो कभी बतलाओ की बात कर रहे, जान बच गया यही काफी है, उस पापी का इतना बड़ा पोथा लिख कर चित्रगुप्त रखा और हम लोग गए मरने से बच गए, चार चार विचित्र देवता आए और इस सारी घटनाओं को बतला दिया। तब कहते हैं जमराज की ओहो, उस प्रभु से पहले क्षमा मांगे कि हमारे परिकरों के द्वारा किया गया यह अपराध हमारा अपराध है, हमें माफ कीजिए। तब कहते हैं कि देखो, भगवान धर्म का स्थापना किए हैं, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, उसको सब लोग नहीं जानते, उस धर्म के रहस्य को कुछ सिलेक्टेड लोग जानते हैं। 12 सब कुछ कहने के बाद अंत में कहे कि तब तो हमारा काम खत्म, छुट्टी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान का नाम लेंगे, भजन करेंगे, तो हमारा नौकरी खत्म, अब हमारा काम खत्म। तब कहते हैं नहीं नहीं, तुम लोगों का भी काम है, अभी बहुत काम है, ऐसा नहीं कि सब भजन कर लेंगे। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्चन स्मृति चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अक्षरय कदापि, ताना न अध्वम अस्तो अकृत विष्णु कृत्यान। तुम लोगों को उसके पास जाना है जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आ रहा है, और जो जिह्वा पर नाम आ रहा है वो मेरे रेंज से बाहर। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसका चित भगवान की लीलाओं का स्मरण न करता हो, चेतश्चन स्मृति चरणारविंदम, जिसका माथा भगवान के सामने नहीं झुकता हो, कृष्णाय नो नमति अक्षरय कदापि, ताना न अध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान, ऐसे दुष्टों के पास जाओ। हमारा फैकल्टी दुष्टों का है, सजनों की फैकल्टी मेरे जी में नहीं है, वो हमारे रेंज के बाहर है, तो उनकी गलती अगर कुछ गलती भी हो गया कदाचित, तो उसको जमराज नहीं देखते, उसको सीधे भगवान देखते हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, राज शासन का नहीं है, वो सीधे वहां से देखते हैं और फिर उसके दंड के अनुसार उसको चांस देते हैं। फिर अच्छे वैष्णव परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, जमराज का काम नहीं है, जो धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसको जो मौका दिया जाता है। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि सुचि नाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्टो भी जायते, ये भगवान का काम है, भगवान चांस देते हैं, फिर से उसे मौका देते हैं, धाम में गलती करने वाले को धाम में ही रखते हैं, सुअर बनाकर गधा बनाकर किसी तरह वैष्णव का दर्शन करते हैं, बंदर बना देते हैं, ज्यादा कामुकता दिखाए बंदर बन जाओ सुअर बन जाओ, लेकिन बाहर नरक नहीं जाने देते हैं। फिर किसी तरह वैष्णव संघ का प्रसाद का लाभ लेकर फिर प्रगति कर सकता है, तो जमराज के रेंज का बाहर है। हम लोग भी बाहर के हैं, हम जमराज के अंदर के नहीं हैं। अगर एक नाम में इतनी शक्ति है तो हम लोग बहुत नाम लिए, लेकिन यह मतलब नहीं कि हम केवल जमराज के फंदे से बच गए, बस हमारा काम हो गया। अभी हमको कृष्ण प्रेम हमारा लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम तक प्रगति करना है, आगे के तो वो कर लेंगे। तो हमारा लक्ष्य जमराज से बचना नहीं है। हाँ हाँ नहीं नहीं, मैं आपको इसी संदर्भ में बहुत पुराने घटना बतला देता हूँ, आप उससे कुछ समझ सकते हैं। मैं नाम तो नहीं रखूंगा, कुछ नाम आप लोगों में से जानते होंगे, लेकिन 86 की घटना है। पुरी से मायापुर तक पदयात्रा में मैं भी था एक एक दिन। तो उसमें दो भक्त थे जो मार्केटिंग करते थे, कोई सामान खरीदना बैल के लिए, हाथी के लिए, या भक्तों के लिए प्रसाद की। कभी कभी तो कोई रिस्पॉन्सर कर देता, कभी खरीदना पड़ता। तो लोग मार्केटिंग करते थे, दो लोग लगातार करते रहे। तो वो बीच में एक घटना हो गई कि अब दोनों को हटाने की बात आ गई। बड़े गंभीर थे वो समय इंचार्ज थे, भद्रदास राधारमण महाराज। एक प्रताप रुद्र थे इधर, प्रताप रुद्र दास वो कैशियर थे। तो सब लोग एक स्वर में उनको हटाने के निर्णय ले लिए। तो उन लोगों से गलती क्या हो गई थी कि तीन चार बार रिपोर्ट मिल गया कि ये लोग कहीं दुकान में जाड़ा का दिन है अंडा खाते हैं, पता लगा कि रात को सोने से पहले शराब पीते हैं, कई रिपोर्ट आ गया। तो अब बात हुई कि श्रीपाद लोकनाथ महाराज, जयद्वैत महाराज दोनों रेगुलर परिक्रमा में थे, कभी कभी इधर उधर जाते थे। तो उन लोगों के सामने प्रस्ताव रखा गया, बड़ा अचानक एकदम बड़ा गर्म डिस्कशन हो रहा था। भद्र कह रहे थे एकदम नहीं महाराज, आप इतना लूज पूज रहेंगे तो हम छोड़ देंगे, बहुत कड़ा बोल रहे थे। तो अचानक मैं भी चला गया। उस समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेवारी जो चल रही थी वो कुछ दिन के लिए, एक महीना 20 दिन के लिए मैं संभाला था। तो मैं प्रताप रुद्र को खोजते हुए चला गया, क्योंकि उनके पास जमा करना था। तो चला गया तो देखा तो एकदम बड़ा कड़ा बोल रहे हैं सब जोर जोर से। तो मैं अब नीचे हटना चाहा तो महाराज देख लिए, लोकनाथ महाराज, तो बुलाए नहीं आइए आइए। तो मैं बैठ गया उस मीटिंग में, तो मैं प्रत्यक्ष उस मीटिंग को देखा कि राधारमण महाराज और भद्र कह रहे थे कि नहीं, किसी हालत में इनको नहीं रखना है, एकदम निकालना है, कोई गुंजाइश नहीं है इनको रखने का। चार बार कंप्लेन आया, पांच बार आया, ये भक्त कह रहा है, वो भक्त कह रहा है। तो जयदत्त महाराज भी कुछ बोले, इसके बाद लोकनाथ महाराज सिर हिलाते हुए मुस्कुरा कर कहे, नहीं किस दृष्टि से निकालना है, किस दृष्टि से उसको निकाल, तो ये बुरा है बुरा है बुरा है। नहीं सब तो माने हमारे परिक्रमा में गलत असर पड़ेगा, लोगों पर ये पड़ेगा वो पड़ेगा। मैंने कहा सब पॉइंट पर विचार कर लिए, कुछ छूटा हो तो उस पर भी विचार कर लीजिए। तो कहे कुछ नहीं छूटा है। तो कहे एक चीज छूटा है ना कि उन लोगों का क्या होगा जब भक्त समाज छोड़कर चले जाएंगे। तो इस पॉइंट पर एक बार और विचार कीजिए, शायद इस पॉइंट को आप लोग छोड़ रहे हैं। आप लोग एक बार इस पर विचार कीजिए कि ये लोग जब हमारे जैसे वैष्णव समाज में ये दुर्गुण को अपना कर रखे हैं, तो हमसे अलग जाएंगे तो इन बेचारों का क्या होगा। तो भद्र इतना नाराज हुए, सुने ही नहीं, एकदम निकल गए कि आप विचार करते रहिए, मैं चला, एकदम चले गए। आप तो ऐसे ही करते हैं महाराज, एकदम नाराज होकर चले गए। तो फिर प्रताप रुद्र राधा रमन महाराज उनको पकड़ कर लाए कि नहीं नहीं बैठिए बैठिए। तो फिर क्या किया जाए, कहना एक बार अभी बुलाइए उन लोगों को, दोनों को यहीं बुलाइए मीटिंग में ही, और पूछा जाए कि क्या चाहते हैं। अब तक तो आप लोग कहे हैं, हम लोग नहीं कहे हैं, हम तो अब सुन रहे हैं, तो एक बार हमारे सामने लाइए और पूछा जाए। तो मैं तो फिर चला गया, लेकिन इतना मैं सुना महाराज का वो वाक्य, बाद में उन दोनों को रखा ही गया मायापुर तक, लेकिन शायद वो लोग छोड़ दिए वो आदत। अब क्या हुआ बाद में, तो यही निर्णय से पता चला कि उन लोगों को रखा गया, भगाया नहीं गया। तो यह विचारणीय है ना कि बेचारा वहां से निकाल देने पर वो क्या होगा, ऐसे उसको दंडित करना, कुछ अपमानित करना, ये सब किया जा सकता है, जिससे उसको लगे कि हमारा हम गलती है, तब ऐसा हुआ है, फीलिंग कर ले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब बिल्कुल अपना व्यक्ति होता है तो इस तरह की बात करने लगते हैं कि नहीं, पक्ष लेने लगते हैं, एकदम अपने नजदीकी की गलती को पक्ष लेने लगते हैं। तो इसको कहा गया है कि जब कोई एक जज था, बहुत फांसी देता था, छोटे छोटे गलती पर ही फांसी दे देता था, जब उसका बेटा एक मर्डर केस में आ गया तब कहता है वास्तव में फांसी से व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसको चांस देना चाहिए सुधरने का। व्यक्तित्व को सुधारना है ना कि शरीर को नष्ट करना ठीक नहीं है। तो जो कमेंट अपने बेटे के लिए बतलाया वो दूसरे के लिए भी बतलाना चाहिए था। तो कभी कभी न्यायाधीश लोग, निर्णय करने वाले लोग अपने लोगों की पक्ष ले लेते हैं और बाकी के निकाल दो, तुरंत निकाल दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर एक बार दो बार तीन बार विचार कर उसको सुधरने का चांस देना चाहिए। जब बिल्कुल नहीं सुधर रहा है और उसके कारण जैसे आलू सड़ने लगता है तो सब और को भी सड़ाता है, तो उसको निकालना पड़ता है, तो उसको भी सरकार की भी एक व्यवस्था है कि वो सस्पेंड करता है कुछ, ऐसा नहीं कि एकदम बर्खास्त कर दे तुरंत। जब दो चार बार गलती कर देता है सस्पेंड तब एकदम बर्खास्त कर देता है। तो इस तरह से चांस देना चाहिए, एकाएक निकालने का निर्णय नहीं लेना चाहिए, एक दो बार तीन बार, कम से कम तीन बार तो चांस मिलना चाहिए जिससे वो सुधरे। नहीं सुधर आए तो उसके कारण और न बिगड़ पाए, इसके लिए तो मजबूरी हो जाती है हटाना, तो वो बात दूसरी है। हाँ, इनकी बात तो सुनी नहीं गई। ओहो, हाँ समझ गया। हाँ स्वपच केवल जाति से है, जाति ब्राह्मण है और क्षत्रिय है, वैश्य है, शुद्ध है, स्वपच है। स्वपच माने ऐसे परिवार में जन्मा हुआ जिसके परिवार के लोग कुत्ता का मांस खाते थे, जो जैसे मलाह परिवार, स्वपच चंडाल परिवार, तो उस परिवार में जन्मा है लेकिन वो भक्त है, तब वो गुरु शायद। वैष्णव हो गया तो अब स्वपच नहीं है, ये नहीं कि तिलक कंठी लगा कर कुत्ता का मांस खा रहा है। स्वपच में जन्मा हुआ है और एक ब्राह्मण, सत कर्म निपुणो विप्रो, तंत्र मंत्र विशारद, सब कुछ जानता है, लेकिन अवैष्णव न गुरु शायद। गुरु कैसे होगा, गुरु तो होकर भगवान के विषय में बतलाना है ना, और भगवान के विषय में उसे जानकारी ही नहीं है तो फिर कैसे गुरु होगा। इसे किवा न्यासी, किवा शूद्र, क्या किवा विप्र, किवा विप्र, किवा न्यासी, शूद्र के ने नय, जयी कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। तो जो कृष्ण तत्व को जानता है वही कृष्ण के विषय में बताएगा ना, गुरु का अर्थ बताने वाला। तो जो नहीं जानता है, वैष्णव है ही नहीं, शाक्त है, शैव है, तांत्रिक है, तो वैष्णव नहीं हो सकता, गुरु नहीं हो सकता। हाँ हाँ नहीं नहीं वो हम पोषण माने मैं एक उदाहरण दिया आप दस दे सकते हैं, एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण है। केवल प्रहलाद नहीं, प्रियव्रत महाराज भी ऐसे थे और भी थे, ध्रुव महाराज भी ऐसे थे। ध्रुव महाराज भी उनके चरणों की ही प्रार्थना करने लगे, लेकिन भगवान कहे कि नहीं नहीं तुम राज भी करो और इसके बाद वैकुंठ। नहीं तो भगवान पर ब्लेम लग जाता ना कि देखो छोटा बच्चा 5 वर्ष का भजन किया, उनका ब्रेन वॉश करके उसको खत्म कर दे तो भगवान अपना इज्जत बचाएंगे ना, कहेंगे नहीं नहीं तुमको तो अपने पिता का भी राज सिंहासन, इसके बाद ध्रुव लोक। तो भगवान अपनी बेइज्जती थोड़े सुनना चाहते हैं। नहीं हमको डिटेल नहीं जानकारी है, नहीं उसमें विशेष नहीं बताएंगे, थोड़ा जितना सुने उतना ही बताएंगे। हो सकता है हम कहे उसमें भी अधूरा हो, आप जानते हो ज्यादा, कोई जरूरी नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर इसमें कुछ छूटा होगा तो इसका अर्थ है कि मैं उसको नहीं समझ पाया, नहीं जानता हूँ, और जो जानते हो वो चर्चा कर सकते हैं। नहीं नहीं बहुत बढ़िया पूछे, कोई त्रुटि नहीं तो हो गया। मैं सोचा 2 श्लोक किया जाए तो अच्छा। ओह और 2 लोग थे ना, ठीक अच्छा आपकी जिज्ञासा है। देखिए बाली बली और काली 3 लोग हैं जो भगवान को चुप कर दिए। बाली का तो आप सुन ही लिए, और बली महाराज, बली महाराज को जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान जब डांटने लगे कल वामन द्वादशी है, अच्छा है इनका स्मरण कर लिया जाए, कहे कि अरे धूर्त तुम्हारे बात पर मैं विश्वास करके सोच लिया कि तुम 3 डेग देगा, लेकिन उस समय इतना बहस बांध रहा था लोका नाम एक मिश्रम, मैं 3 लोकों का स्वामी हूँ और मेरी बेइज्जती है कि मेरे दरवाजे पर जो एक बार आ जाए और फिर दूसरे के दरवाजे पर जाएगा भिक्षा मांगने तो मेरा इज्जत चला जाएगा कि देखो उसने कुछ दिया नहीं इसलिए बेचारा दूसरे के हाथ। जान जाओ कि मैं ऐसा दाता हूँ कि जो जीवन में एक बार मेरे पास आ जाता है उसका जीवन भर की भिखमंगी समाप्त, और मुझको तू 3 डेग नहीं दे पाया। गरुण जी को कहे बांध दो इसको, अरेस्ट करो। कहे बता 3रा डेग कहाँ है, कहाँ है? तब बलि महाराज कहते हैं कि हे प्रभु आप उत्तम श्लोक हैं। अगर वो श्लोक दाता याद नहीं है लेकिन उसमें यही भाव है कि हे नाथ आप उत्तम श्लोक हैं, आपकी लीला आपकी महिमा आपकी कथा बड़े श्रेष्ठ श्लोकों में गाया जाता है बड़े बड़े लोगों द्वारा, तो आप उत्तम श्लोक रहेंगे ही, आप इतने बड़े हैं, लेकिन मैं तो छोटा व्यक्ति कुछ भी करूं तो छोटा हूं, तो आप उत्तम श्लोक एक व्यंग्योक्ति भी है, कटाक्ष भी है। आचार्य लोग कहते हैं कि बलि महाराज कटाक्ष कर रहे हैं कि मैं धूर्त हूं कि आप धूर्त हूं विचार कर लीजिए। आप बावना बनकर आए छोटा शरीर लेकर, अपना डेग दिखा रहे थे कि मैं अपने डेग से लूंगा, अपने डेग से 3 डेग, तो कोई भी व्यक्ति भ्रम कर सकता है कि आप छोटा डेग लेकर आए हैं। लेकिन एक सिद्धांत यह है कि धन से धनवान का कीमत दूना होता है। धन जितना है मेरी सारी प्रॉपर्टी 2 डेग में, और उसके दूना मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। 3रा डेग आप मेरे सिर पर रख लीजिए, हे उत्तम श्लोक आप आए थे 3 डेग लेने के लिए, 6 डेग ले लीजिए। 2 में सारी प्रॉपर्टी हमारा और 2 के गुना 4 दूना मैं 4, तो मुझे भी मेरे सिर पर अपना चरण रख करके आप मुझे भी स्वीकार कर लीजिए। मेरा ममतास्पद जो था मेरा वो तो ले लिए, अब मम भी ले लीजिए, मुझे भी ले लीजिए। तो भगवान प्रसन्न हो गए, कहे अगर मैं अनुचित कह रहा हूँ तो आप बताइए, आप मेरा तो सब कुछ ले लिए लेकिन मुझे छोड़ लिए, तो 3रे डेग में मुझे भी नाप लीजिए। मैं झूठा हूँ कि आप विचार कर लीजिए। इस तरह कहे जब बलि महाराज तो भगवान एकदम बोल नहीं पाए, अधीन हो गए, अपना चरण के सिर पर रख कर कहते हैं कि ब्रह्मा जी से कहते हैं, उनसे भी कहते हैं कि बलि तुम सूतल लोक में जाओ, और वह सूतल लोक स्वर्ग से भी बढ़कर सुख संपदा से भरा हुआ है, और अपने लोगों के साथ लेकर जाओ। तो बलि महाराज के मन में आया कि मैं फिर असुरों के समाज में रहूं, ये कौन सी कृपा है, आपका संग, आपके भक्तों का संग सब छूट जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं, मैं सूतल लोक में तुम्हारा गेट कीपर बनकर रहूंगा। यह भगवान की हार है, बलि महाराज के सामने पराजय है। और वहां कहते हैं जो जिधर भी देखोगे वहां मैं दिखूंगा, तुम्हारे दान के प्रतिकार नहीं कर सकता, नौकर बनकर ही चुकाना पड़ेगा। आप इस तरह बांध कर भी भगवान अपने को पराजित महसूस करते हैं, तो वहां भी चुप हो गए, अब कोई तर्क नहीं दे पाए जब बलि महाराज ने अपने को प्रस्तुत किया। तो अकालिये जो कालिये नाग, जब नाग पत्नियां प्रार्थना की तो भगवान उसको छोड़े, तो नाग पत्नियां कुछ कह ली तो कालिये भी कुछ कहा, जब भेंट सब देने लगे तो कालिये प्रश्न किया भगवान से, प्रभु मैं कुछ आप लोगों आपसे पूछ सकता हूँ? भगवान कहा बोलो। तो कहे आप जगत सृष्टा है, इस जगत की रचना किसने किया है? तो भगवान किसने किया है, इतनी बेवकूफी की बात क्यों पूछ रहे हो, मैं किया हूँ। तो आप जब जगत के सृष्टा है तो मेरे स्वभाव और मेरे अंदर विष कौन भरा, मैं कि आप? मेरा जो स्वभाव बना है उसका निर्माता मैं हूँ, मेरे अंदर विष जो भरा है लोगों को कष्ट देने वाला उसकी सृष्टि मैं कर लिया, जैसे लोगों को कष्ट हो रहा है आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है, और सृष्टा सृष्टिकर्ता आप हैं। तो इसमें अगर तत्त्वतः विचार किया जाए तो जो कुछ भी हुआ वो आपके द्वारा हुआ है, विष आपके द्वारा दिया गया है, दोष मुझ पर लगाया जा रहा है, तो आप बताइए ना कौन सृष्टि करता है। तो भगवान चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। कहे ठीक है, अब तुमको मेरे धाम में नहीं रहना चाहिए, या मेरा धाम दूषित हो रहा है, तुम ब्रह्मरक द्वीप चले जाओ, और अब तुमको उनसे भय नहीं होगा गरुण जी से, क्योंकि मेरा फुट प्रिंट बहुत मार दिया गया, चिन्ह देख लेगा गरुण तो तुमको पूजा करेगा, सम्मान करेगा, मारेगा नहीं। तो इस तरह से भगवान अंत में विदा कर दिए, लेकिन चुप हो गए उसकी बातों के सामने। तो आचार्य लोग कहते हैं कि तीन भक्त ऐसा हुए कि भगवान को भी चुप कर दिए, बाली बलि और काली कालिये। तो छूट ही गया था, ठीक ही किए, आपके मन में जिज्ञासा बना रहा। तो मैं तो सोचा कि आज एक को पूरा करूंगा, लेकिन अब कल दो श्लोक किया जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण, जय श्री राधा।